हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही जल्द निकट आ रही है और इसके उपलक्ष्य में श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर में भगवान के लीलाओं का क्रमशः वर्णन आयोजित किया गया है। और इसी दौरान आज शकटासुर वध और प्रणावर्त वध ये कथाएं बताई जाएंगी। वैसे श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है वो हर कदम पर एक उत्सव है। श्री ब्रज में जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो केवल वो उत्सव ही उत्सव है। चाहे वो राक्षस को मारना हो या माखन चुराना हो या भगवान के वस्त्र पहनाना हो, भगवान को नहलाना हो, भगवान को भोजन कराना हो, भगवान के लिए दधि मंथन करना हो, भगवान को शयन कराना हो, भगवान के लिए गीत गाना हो, उत्सव ही उत्सव है। हर एक दिन उत्सव है। हम सब लोग उत्सव प्रिय हैं, खास करके भारत के लोग, वैसे मानव जाति, लेकिन खास करके भारत के लोग जो हैं, हमारी संस्कृति उत्सव प्रिय है, क्योंकि भगवान स्वयं उत्सव प्रिय है। इसलिए उनकी प्रिय भूमि जो भारत भूमि है, यहाँ पर हमेशा उत्सव होते रहते हैं। क्योंकि जब कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र भगवान जब अवतार लेते हैं, सारे अवतारों के समय पर केवल उत्सव ही उत्सव होता है। एवरी एक्टिविटी इज़ अ फेस्टिवल, और इसी में आत्मा का परम आनंद छुपा हुआ है। जब कृष्ण भगवान के उत्सवमय लीलाओं में जीव रुचि लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की जय हो। जैसे राधा गिरिधर जी का दर्शन है, ये भी एक उत्सव है। हमारी जैसी भावना है उस प्रकार से रोज का उत्सव है। रोज सवेरे आना है, रोज दर्शन करना है, रोज उनके लिए गीत गाना है, रोज उनकी आरती करनी है, रोज उनको भोग लगाना है, रोज उनका दर्शन करना है, नेत्रों से उनके दिव्य तनु को ग्रहण करना है और आत्मा को शुद्ध करना है। यही उत्सव है। और प्रभुपाद जी ने ये उत्सवमय जीवन हमें दे दिया। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। हमारे दुख भरे, कष्ट भरे, पीड़ा भरे, क्लेश भरे जीवन में श्री प्रभुपाद जी ने ये उत्सव को इंट्रोड्यूस किया। कृष्ण भावना में जीवन एक श्रेष्ठ उत्सव है, जिसको भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसको अनुभव करते हुए या उसके बारे में कोई कार्य करते हुए कोई कष्ट नहीं है और सुख भी नहीं है, सुसुखम है, मतलब अति सुख है उसके अंदर। कोई उसमें श्रम होने का अनुभव ही नहीं होता। अगर हमारी चेतना सही जगह पर है तो कृष्ण भावनामय जीवन जो है एक उत्सव है पूरा। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, नंद महाराज ने, यशोदा माई ने भगवान कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाया, जो नंदोत्सव नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और भगवान का जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और रोहिणी नक्षत्र जब दोबारा भगवान के जन्म होने के बाद में दोबारा जब आया, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है या कोई भी नक्षत्र है वो हर महीने में आता है, टर्न बाय टर्न, एक के बाद उसका सीक्वेंस होता है। और जब भगवान का जन्म हुआ तो रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन जब अगले महीने में जब पुनः प्रथम ये नक्षत्र आया तो यशोदा माई ने फिर और एक उत्सव मनाया। क्यों? क्योंकि ये वही नक्षत्र है जिस पर हमारे कान्हा का जन्म हुआ था, तो फिर दोबारा उत्सव मनाया। तो ये आनंद वृंदावन चंपू लिखा है कि तीन महीने के बाद में जब ये नक्षत्र आया, हर महीने में आता है लेकिन तीसरे महीने में जब आया तो एक सुंदर घटना घटी। कैसे? ब्रज की हर एक घटना एक उत्सव है। क्या घटना हुई? भगवान ने उत्थान किया, यानी कि भगवान अभी अब तक पीठ पर सो रहे थे, अभी उन्होंने सुंदर करवट ली और वो अपने घुटने और हाथ के बल पर आ गए और रेंगते 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 वो अपने घर के आंगन के बाहर गए। और यशोदा माई ने सोचा कितना बड़ा सुंदर चेंज है ये, चेंज है ना, अभी तक वो पीठ के बल पर सो रहे थे, अभी अपने ही ऊपर बल पर करवट ली, हाथ और घुटने के बल पर आए और रेंगते हुए प्रेम से आंगन के बाहर चले गए और घर को उन्होंने पवित्र कर दिया। तो इस समय यशोदा ने एक बुंदर सुंदर पवित्र उत्सव मनाया, इसमें सारे गौ बालों को बुलाया, स्त्रियों को पुरुषों को, और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, अलंकार धारण करके, घुंघरू धारण करके, उसकी ध्वनि करते हुए सारे ब्रजवासी स्त्रियां और पुरुष दौड़ दौड़ के नंद भवन में आए। गोपियों ने अपने शरीर में सुंदर सुगंधी तेलों का लेप किया था, उन्होंने सब मिलकर भगवान को लाल वस्त्र में सुशोभित किया, लाल वस्त्र पहनाए और सोने के गहने पहनाए हाथ में और पांव में, और आंखों में सुंदर काजल लगाया, नेत्रों की शोभा बढ़ाई, और शेर के नख होते ना, बाघ नख बोलते हैं उसको, उस बाघ नख से बना हुआ चंद्रहार उन्होंने भगवान को पहनाया। और सब धूमधाम मच रही थी, वाद्य बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, श्लोक गाए जा रहे थे, तो सब बिजी हो गए सब लोग। यशोदा माई ने भगवान को स्तनपान कराया और एक बड़े भव्य विशाल शकट, यानी कि गाड़ी होती ना, बैलगाड़ी की पीछे का हिस्सा होता है, उसको शकट कहते हैं, उस शकट के पीछे बिस्तर पे भगवान को सुलाया, उसको स्तनपान कराया, और उसके बाजू में स्वयं यशोदा सो गई और भगवान को अच्छी तरह से सुलाया। जब भगवान को नींद आई तो यशोदा माई ने उनको वहीं पर पलने में, बड़ा बिछौना था सुंदर सफ़ेद रंग का गद्दा पहना था उसके ऊपर, जो स्फटिक से भी अधिक तेजमयी था, ऐसा वर्णन कृष्ण कवि कर्णपुर करते हैं कि जो बिस्तर था वो जैसे मानो एक कमरे की तरह था। हमारा बिस्तर कितने का होता है, 6 फीट बाय 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये बिस्तर जो था वो एक कमरे के समान था, और वो भी झूले में था, जिस झूले पर बिस्तर पर यशोदा माई भी इतनी बड़ी शरीर की थी, वो उनका वर्णन आता है कि उनका शरीर पर बड़ा था, स्थूल था, वो भी सो पा रही थी, बाजू में कृष्ण भी सो पा रहे थे, और भी बहुत जगह थी, और वो झूला झूल भी रहा था। उस झूले का भी वर्णन किया है बहुत सुंदर, वो झूला जो था उसके ऊपर रत्नों के खंभे बने थे, ना वॉट इज कोरल, आपने देखा होगा वो था ना, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं पोवड़ा, पोवड़ा मीन्स साउथ इंडियन लोग पहनते हैं उसको, लाल रंग का रहता है मणि, और उससे उनका शादी का गहना बनता है, उसको कहते हैं कोरल। तो उन पत्थरों से उस झुलने वाले जो पलना था उनका, उस पर जो बिस्तर था, वो चार खंभे उस रत्नों से बने थे, फिर लाल रंग के रेशम वस्त्र से उसको पूरा सुशोभित किया गया था, और जो सफ़ेद रंग का जो गद्दा था वो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं उसको, कैम्फर, व्हाट इज कैम्फर, कपूर ना, कपूर, वो धुले हुए कपूर से भी अधिक प्रभावशाली था और सफ़ेद रंग का था, और दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार के रंगों के वस्त्र जो है वो लटक रहे थे, और उसको देखकर और हाथ और पांव लगाकर कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसा करते थे। आप देखते ना खिलौने में वो हमेशा पलना होता है तो उसके ऊपर लटका हुआ था खिलौना, गोल गोल घूमता है या ऐसे ऐसे घूमता है, और बच्चा उसको देखते रहता है और हाथ और पाँव मारते रहता है। तो इस तरह से भगवान उन सुंदर सुंदर रंगी बिरंगी वस्त्रों को देखकर हंस रहे थे और मुंह से भी बहुत सुंदर ध्वनि कर रहे थे, और उनका जो बिस्तर था वो उस बड़े विशाल शकट के एक कोने में था। और भी वर्णन ऐसा आता है कि वो जो शकट था वो कैसा था, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये शकट जो था वो बहुत बड़ा था, और एक बड़ा होता ना हॉल, ऐसा हॉल के जैसा था वो बड़ा, और ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचा था। आप समझ सकते हैं, हम लोग तो बैलगाड़ी, मतलब हमारे मन में क्या ऊंचा रहेगा, हाँ 5 फीट का ऊंचा रहेगा 2-4 फीट और लंबा रहेगा और 1-2 फीट चौड़ा रहेगा, उसमें चक्र रहेंगे बड़े, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये ताड़ के समान ऊंचा था, वहाँ उसका सामान रखने की जगह थी, और उसके जो चक्र थे वो वहाँ से लेकर जमीन तक बड़ा चक्र था उसका,
बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा, ताल के वृक्ष की तरह, ऐसा उसका वर्णन किया है। तो उसके नीचे बड़े ही बड़े हॉल की तरह, उसके कोने में एक पलना है जो झूल रहा है, झूले की तरह है, उसमें यशोदा माई और कृष्ण भगवान लेट रहे हैं, और उसमें कृष्ण भगवान को नींद आने के बाद में यशोदा माई अपने काम के लिए, उत्सव को सहायता करने के लिए, उसको भी कार्य करने के लिए निकल जाती है। और क्या करती है, 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण की देखभाल करने के लिए, देखना अगर रोया हंसा उठा तो मुझे खबर कर देना, खड़ा करके वो चले जाती है। उस समय मृदंग, भेरी, दुंदुभी और ब्राह्मणों के मुंह से निकलने वाले सुंदर सुंदर श्लोकों के आवाज से पूरा आसमान, पूरा वातावरण भरा हुआ था। इसलिए बीच में कृष्ण भगवान को जब भूख लगी तो वो जग गए, और भूख लगने में बच्चा क्या करता है, हाँ रोता है, तो रोने लगे, लेकिन उनके रोने की आवाज़ इन सभी आवाज़ों के बीच में राधा रानी को, सॉरी कृष्ण यशोदा माई को सुनाई नहीं पड़ी। और कृष्ण भगवान को भूख लगी और उन्होंने हाथ पांव झाड़ना शुरू कर दिया। उसी समय उत्कच नाम का राक्षस कंस ने भेजा, पुतना के मारने की बात है। पुतना का वध जो है 6 दिन की उम्र में हुआ था, षष्ठी के दिन जो षष्ठी पूजन हो रहा था उस समय भगवान ने पुतना का वध किया था, उसके बाद में ही उत्कच राक्षस आया। अभी उत्कच राक्षस का इतिहास ऐसा है कि उत्कच राक्षस जो था वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, जानते ना हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के बड़े भाई, और हिरण्याक्ष का पुत्र होने के नाते उसमें बहुत गर्व था, बहुत शक्ति थी। तो उसने वो लोमश ऋषि के आश्रम में गया। लोमश ऋषि बहुत फेमस ऋषि है, हा? जैसे हमारे भारद्वाज, असित, देवल, व्यास, इनके जैसे ही बहुत फेमस है वशिष्ठ। तो उसने क्या किया, उस लोमश ऋषि के आश्रम में गया और आश्रम में जितने पेड़ थे वृक्षावली वो सब उसने धराशायी कर दी, तोड़ तोड़ कर सब नष्ट कर दिया उसने। और उसके बाद में अपना बड़ा विशाल शरीर लेकर बड़े गर्व के साथ में, बड़े एरोगेंटली वो ऋषि के सामने खड़ा हुआ, हंसते हुए ऐसे एरोगेंटली। तो लोमश ऋषि ने कहा कि तुम्हारे बड़े शरीर को तुम्हारा बड़ा गर्व है, तुम शरीर विहीन हो जाओगे, कि तुम्हारा तुम्हारे लिए मेरा शाप है कि तुम शरीर विहीन हो जाओगे, बिना शरीर के हो जाओगे। मतलब प्रत्येक जीव के लिए 2 शरीर होते हैं, आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर के ऊपर हम गर्व करते रहते हैं कि हम दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, शक्तिशाली है, हाँ सुंदर हैं, बड़े तेज वाले हैं। इस प्रकार से वो बड़े अपने शरीर पर, जो देवता का शरीर था, वैसे कि हिरण्याक्ष जो थे वो बहुत सुंदर थे, राक्षस होने पर भी विश्व के राजा थे, वो सारे देवताओं को उसने परास्त कर दिया था। उसका ये बेटा था, तो बड़ा सुंदर, ऐश्वर्य संपन्न और धनवान था वो, तो अपने बड़े शरीर के लिए हाथ लेकर खड़ा हो गया, तो शाप ले गया उसको, तो उसका बड़ा जो विशाल शरीर था जिस पर वो इतना गर्व कर रहा था वो एक क्षण में नष्ट हो गया, और वो भूत प्रेत की तरह बन गया, केवल सूक्ष्म शरीर के साथ में स्थूल शरीर उसका नष्ट हो गया। जैसे सांप से उसका चर्म निकल पड़ता है वैसे वो गिर पड़ा, और वो सूक्ष्म रूप में भूत की तरह बनकर लोमश ऋषि के पैरों में गिर पड़ा, क्योंकि उसका अहंकार जो शरीर के आधारित था वो नष्ट हो गया, नम्र हो गया वो, और वो उनके चरणों में गिर गया। उस समय उसने माफ़ी मांगी कि मुझे उस शाप दीजिए, मुझे बचाइए, मैं शाप से मुक्त कर दीजिए। तो लोमश ऋषि ने कहा, शाप से मुक्त नहीं हो सकते आप, शाप तो दे दिया मैंने आपको, लेकिन आपको उस शाप जरूर दे सकते हैं, चाक्षुष मन्वंतर के, चाक्षुष मनु का जो कार्यावधि, कालावधि है, उसके अंत तक आप ऐसे भूत बने रहोगे, लेकिन जब वैवस्वत मनु का समय आएगा, उस वैवस्वत मनु के कालावधि में जब 28वां द्वापर आएगा, उसके अंत में जब श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम जब अवतार लेंगे, तब उनके शरीर के स्पर्श के कारण आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा वरदान उसको मिला था। तो वो उत्कच राक्षस उस समय वहां पर सूक्ष्म शरीर में, मतलब वायु के रूप में, वायु बहुत प्रकार के भूत प्रेत होते हैं, जिसका वायु प्रधान शरीर होता है, जिसका अवकाश प्रधान शरीर होता है, ऐसे अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के 11 प्रकार के भूत प्रेत का वर्णन किया गया है। तो वो शकट के ऊपर वो उत्कच जो है वो आ गया, उसने विचार किया था कि देव पुतना ने तो शरीर को बदल कर अच्छा रूप धारण करके उसका वध करने का प्रयास किया, तो वो सफल नहीं हुई, तो मैं अभी अदृश्य रूप में, तो वैसे ही भूत का शरीर, वायु का शरीर है, वो रूप में आऊँगा और इस विशाल
ताड़ वृक्ष के समान लंबा जो चकट है उस पर बैठ जाऊंगा और इस चकट को ऐसे तरह से तोड़ दूंगा कि ये सारा प्रहार भगवान कृष्ण जो है उसके सर पे हो जाए, सारा बड़ा शकट जो है सर पर उसका आघात हो जाए और बालक की मृत्यु हो जाए। जैसे ही ये राक्षस उस शकट पर आया तो जो शकट था उसके बड़े बड़े पहिए जो है उस शकट उस उत्कच के भूत के वजन की वजह से धरा में घुस गए, पृथ्वी में अंदर घुस गए और उधर एक्सल जो जो पूरे शकट को उस चक्र से बांध के रखता है हा? वो टो भी टूट गया और उसी समय भगवान को भूख लगी, उसी भगवान जग गए और भगवान ने प्रेम में बच्चा जैसे रोता है ना ऐसे दोनों पाँव मार के ऐसे पाँव से केवल एक साइड में एक चक्र के रट के एक साइड में ऐसा किक कर दिया, लत्ता प्रहार कर दिया और वो लत्ता प्रहार होते ही बिना कुछ समझ में आए राक्षस के तुरंत वो जो पूरा रथ जो है वो एक साइड में ऐसा गिर गया पूरा जो जो शकट तो था। और ऐसे कहा गया है उधर गोपाल चौंप में जो गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के कोमल मक्खन जैसे मुलायम चरण जो रुई की तरह होते हैं उसका उसका कोई वजन नहीं होता है। आप यशोदा माई हमेशा कहते थे कितनी नाजुक कमल चरण कमल है, पैर पर जमीन पर रखेंगे तो कैसा कष्ट होगा उनको, भूमि कितनी सख्त है, हाँ पत्थर कंकड़ तो कांटों की बात नहीं कर रहे, इतना सुंदर मुलायम चरण कमल जो है वो रो रहे हैं वो दूध के लिए, माता के दूध के लिए भूख से। उन्हें स्पर्श किया तो इतना भयंकर जो शकट था ताड़ के उसके समान ऊंचा था वो टुकड़े टुकड़े हो गया और जैसे ही वो स्पर्श उसको हुआ तो वो राक्षस जो है एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ गया, बहुत ऊंचे आकाश में गया और धड़ाड़ करके जमीन पे गिर गया और वहीं उसका मृत्यु हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय आकाश से एक विमान आया, दिव्य विमान वैकुंठ से, इसमें 100 घोड़े लगे हुए थे, 100 घोड़े उसको खींच रहे थे, उसमें विष्णु देव थे, उसके ऊपर ये वायु रूपी भूत था उसका रूपांतर विष्णु दूत के शरीर के समान हो गया और उसको उन्होंने रथ पे लिया और लेकर वो गोलोक धाम चले गए। तो उस समय ये बाहुलाश्व राजा जो है वो नारद मुनि से कथा सुन रहे हैं, वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तब नारद मुनि ने उनको ये पूरी कथा सुनाई कि लोमश ऋषि ने उनको वरदान दिया था कि जब भगवान के दिव्य चरण कमलों का तुझे स्पर्श होगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो सीधे रथ में बैठकर वो गोलोक धाम चला गया। तो यहाँ पर लोमश ऋषि के इस शाप के बारे में वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण द्वेष असत्य गर्व यानी कि अहंकार और जिस व्यक्ति इससे मुक्त है वही शाप दे सकता है। और क्या क्या गुण होने चाहिए उस ब्राह्मण के अंदर, वो द्वेष मुक्त होना चाहिए, हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, उसके अंदर गर्व नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी के खिलाफ ग्रज नहीं होना चाहिए। ग्रज का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई ऐसा मन में यार कोई ऐसे आपने ऐसे बोला इसलिए दुख हो रहा है, आपने वो अच्छा किया इसलिए दुख हो रहा है, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी हुआ है उसके बारे में मन में कोई किंतु नहीं होना चाहिए उसके में, ये ब्राह्मण का एक गुण है। और वो ऐसा ब्राह्मण होगा तो ही वो शाप या वरदान दे सकता है। हा? कोई भी ब्राह्मण जनी बनेगा तो ऐसा तथास्तु नहीं कर सकता है। और भी कहा गया है कि दूसरों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों के ऐश्वर्य के कारण उसके मन में कोई जलन नहीं होनी चाहिए। खुद भी ऐश्वर्य नहीं होगा लेकिन उससे अधिक कोई ऐश्वर्य संपन्न हो गया तो उस व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और उसके मन में कोई भी मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई गर्व नहीं होना चाहिए किसी बात। ऐसा ही ब्राह्मण हो तो वरदान या शाप दे सकता है और ऐसा वरदान ब्राह्मण जब वरदान या शाप देता है तो उसके वरदान में और शाप में कोई अंतर नहीं होता है, ना वरदान अच्छे के लिए होता है ना शाप उसके बुरे के लिए होता है, दोनों उसके कल्याण के लिए होता है। जैसे नारद मुनि ने नलक कुबेर मणिगुरु को शाप दिया तो उसके लिए कल्याण था कि उसके लिए खराब था, वो परम कल्याणकारी था, भोग में लिप्त था, उसको नारद मुनि ने ऐसा शाप दिया जिससे वो भगवान के भूमि में जाके विराजमान हो गए, भगवान ने उसी आंगन में जन्म लिया गोकुल के और भगवान की लीलाओं को देखते 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 फिर भगवान के ही द्वारा उसका उद्धार हो गया और तुरंत वो अपने धाम में अपने लोक में प्राप्त हो गए। लेकिन अपने लोक में कुबेर के लोक में जाने के पहले उनको क्या वरदान मिला कि तुम हमेशा मेरे शुद्ध भक्ति में विराजमान रहोगे, भले कुबेर के धनवान लोक में निवास करोगे फिर भी मेरी भक्ति से वंचित नहीं होगे। कितना बड़ा वरदान है। तो ऐसा स्वर्ग में रहना भी अच्छा है। अगर स्वर्ग में रहते हुए अगर ये भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान ने कहा कि 36,000 साल तुम रहोगे, लेकिन कैसे रहोगे, मुझे एक क्षण भी नहीं भूलोगे, तुम्हारे ऊपर किसी भी ऐश्वर्य का कभी परिणाम नहीं होगा, हमेशा मेरी सेवा में लगे रहोगे और सारा भोग लेने के पश्चात भी जरा सा भी लिप्त न होगे और अंत में मेरे धाम में मेरे शुद्ध भक्ति में मेरे चरणों में प्राप्त हो जाओगे, ऐसा अगर निवास मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ब्राह्मण का शाप और वरदान दोनों एक समान होता है और वो दोनों ही जीव के कल्याण के लिए होता है। यहाँ पर कैसा शक्टासुर की इस लीला में हम देख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल मक्खन की तरह मुलायम है, लेकिन उसका स्पर्श जो है वो शक्टासुर को वज्र के समान लग रहा है। उसका स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए, इतना बड़ा ध्वनि हो गया कि सारे बर्तन वगैरह जितने रखे सब जमीन पर गिर गए, उसके इतने टुकड़े हो गए कि वो भयंकर आवाज सुनकर सुदमा भाग भाग के आई और पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, बच्चे के ऊपर इतना बड़ा शकट गिरने से बच्चा कैसे बच गया, इतना बड़ा भयंकर घटना कैसे हुई। तो बालक ने कहा कुछ नहीं हुआ, हमारे कन्हैया ने केवल अपना पांव जो है वो जो चक्र को खाली स्पर्श किया उसका, तो उनको यकीन नहीं हुआ ऐसा कैसे होता है, अरे बालक तो बालक है उनको क्या पता है। तो नंद महाराज यशोदा बड़ी गोपियां से सोच रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल, इतना बड़ा शकट जो ताड़ के उससे समान ऊंचा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, केवल इतने नन्हे से बालक के इतने से पैर कितने से होंगे उसके, उसके स्पर्श से ऐसा हो गया, ये कैसे हो सकता है। इसको जीव गोस्वामी वर्णन करते कि दिव्य मोह है, उनको समझ में नहीं आता है, भगवान की इच्छा से भगवान की योग माया के प्रभाव से ये घटना जो है वो सत्य है कि उनके छोटे से चरण कमल का स्पर्श होकर इतना बड़ा शकट टूट फूट कर गिर गया, ये उनके दिव्य दिमाग में योग माया के प्रभाव से बैठ नहीं रहा है, ये कैसे हो रहा है। और ये देखकर कि इतना बड़ा शकट भगवान के ऊपर न गिरते हुए बाजू में गिरा, लेकिन शोक में यशोदा माई बेहोश हो गई। यशोदा माई बेहोश होने के बाद सब गोपियां भाग भाग के आई और उन्होंने जल वगैरह छिड़क छिड़क के बड़े बड़े भगवान के नाम के गीत गाकर कानों में उनके सांत्वना देते हुए पुकार पुकार कर उसको होश में लाया। जब होश में आई तभी यशोदा माई बहुत दुखी थी, वो कह रहे थे मेरे 3 महीने का बालक है, उसके मक्खन जैसा शरीर मुलायम शरीर है उसका, कितना कष्ट भोग रहा है, जन्म होते ही उसको जन्म के बाद में 6 दिन के अंदर ही पुतना का आघात हो गया, विषपान करना पड़ा उसको, इतनी महान 12 मील की शरीर की विशाल काय पुतना के द्वारा वो बच गया और अभी उसके जन्म का नक्षत्र आया, उत्सव चल रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, इतना बड़ा शकट उस पर गिर गया। बोलते ये सब मेरे दुर्भाग्य के कारण है, ये मेरा ये खबर सुनने के बाद भी मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मेरा हृदय भंग नहीं हो गया और मैं मर नहीं गई, इससे आप सब समझ सकते हो कि मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है। यशोदा विलाप कर रही है, वो कहते हैं वो मेरा दुर्भाग्य है कि पुतना शकटासुर ऐसे राक्षस एक के बाद एक आए और मुझे, मैं समझ रही हूँ कि और भी आगे ये बालक के ऊपर बुरे ग्रह की दृष्टि होने की वजह से और भी आगे बहुत संकट आएंगे, ऐसा मुझे कुछ हृदय में महसूस हो रहा है। तो तुरंत नंद महाराज को उन्होंने विनती की कि ब्राह्मणों को बुलाओ और पवित्र कार्य पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके शुद्धिकरण करो, बाल ग्रह की शांति करो और कृष्ण को गोद में लेकर तुरंत उसने स्तनपान कराया। ये बहुत सिग्निफिकेंट घटना है कि जब ये जितने भी राक्षसों का वध भगवान ने किया, जितने भी संकट से भगवान बच गए, अर्थात भगवान को कोई संकट नहीं है, संकट तो ब्रजवासियों के लिए लगता था कि भगवान के लिए है, लेकिन वो तथाकथित संकट जब नष्ट हो गया तो हर समय भगवान को बालक को यशोदा मैया ने गोद में लेकर स्तनपान कराया है। इस स्तनपान की विधि जो है ये भगवान तो भगवान है उनके लिए सब लागू नहीं नियम, लेकिन हमारे लिए अगर देखते हैं स्तनपान एक बड़ी सुरक्षा का कार्य है। जब माता कोई अपने बालक को स्तनपान कराती है तो बालक को बड़ा सुरक्षा का अनुभव होता है और स्तनपान के माध्यम से अपना प्रेम अपनी सुरक्षा की भावना अपनी सेवा की भावना माता बालक के आत्मा तक पहुंचाती है। इसलिए बालक भी जब भी डरता है कोई बालक और जब माता की गोद में जाकर स्तनपान करता है तो वो अपने आप को निर्भय अनुभव करता है, निर्भयता के अनुभव करता है। इसलिए सभी माताओं को बताना चाहते हैं कि कभी भी अपने बालक को स्तनपान से वंचित नहीं कराना। जितना समय बालक स्तनपान कर सकता है उतना तक बालक को स्तनपान कराना चाहिए। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि उसको 2 साल बिना अवरोध के स्तनपान कराना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पुरुष मतलब मेल लड़का है उसको 5 साल तक स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि उसको उसके बाद में स्तन को देखकर सेक्स की भावना मन में काम भावना उत्पन्न नहीं होगी। वो हर स्तन को देखने पर उसको माता की याद आएगी, क्योंकि बच समझ बूझ आते तक उसने स्तनपान किया है। इसलिए प्रभुपाद जी का विशेष सूचना थी माताओं के लिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि स्तनपान करने से बालक को सारे रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त होती है, जितने भी एंटीबॉडीज होती है वो सारे माता के स्तन से परफेक्ट कंडीशन में परफेक्ट टेम्परेचर में सीधे माँ बालक के मुंह में वो प्राप्त होता है और बालक का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और बालक की रोग प्रतिकारक शक्ति भी हृष्ट पुष्ट हो जाती है। तो जब बालक को वो स्तनपान करा रही थी यशोदा, तभी चारों वेदों से ब्राह्मण श्लोक गा रहे थे। तभी जड़ी बूटियों के औषधि जल द्वारा भगवान को स्नान कराया गया, यज्ञ कराया गया जिससे ब्राह्मणों ने ग्रह शांति कराई, और फिर ब्राह्मणों को नंद महाराज ने उच्च प्रति के धान्यों से बना हुआ अन्न खिलाया और उच्च प्रति के गायों से बना हुआ दुग्ध पदार्थ खिलाया भोग के रूप में। और अपने बेटे के कल्याण के लिए सर्व गुणों पेता यानी कि दूध देने वाली श्रेष्ठ गायों को दान किया। और कैसी को दान किया? उस गायों को सुंदर वस्त्र वासहा यानी सुंदर वस्त्र से सुशोभित किया, स्रगह यानी सुंदर मालाओं से सुशोभित किया, और रुक्म मालिनी यानी सोने के नेकलेसेस द्वारा सोने के मालाओं द्वारा सुशोभित की हुई गायों को ब्राह्मणों को दान किया। फिर ब्राह्मणों ने सभी परिवार के सदस्यों को और खासकर कृष्ण भगवान को बहुत आशीर्वाद दिए। और कृष्ण भगवान ये सब जो कार्य हो रहा है तब आनंद से लेटे हुए थे। और कवि कर्णापुर जी गोस्वामी बजा बताते हैं कि केवल अपने आप को पैम्पर करने के लिए टू गेट हिमसेल्फ पैम्पर्ड श्री कृष्ण भगवान अरेंजेस दिस काइंड ऑफ पास टाइम्स। तो हर बार उनको श्लोक गाए जा रहे हैं, हाँ गाय के बछड़े का पूछ लेकर अलग अलग शरीर पे लगाकर उसके भगवान के नामों का उच्चारण किया जा रहा है, उनको नहलाया जा रहा है, उनके द्वारा ग्रह शांति की जा रही है, उनके लिए ब्राह्मणों को दान किया जा रहा है। ये भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भगवान हमेशा अलग 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 लीला करके ब्रजवासियों को उत्कंठा में लाते हैं और उत्कंठा में भगवान के आनंद के लिए सब ब्रजवासी उत्सव मनाते हैं। और भगवान को ब्राह्मणों की सेवा अच्छी लगती है तो भगवान इस तरह से अपने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान इन सारी गतिविधियों से क्या स्वीकार करते हैं? वो केवल प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं। और ये सारी गतिविधियां जो है ब्रजवासी लोग यशोदा के माताजी के नेतृत्व में नंद महाराज के नेतृत्व में केवल भगवान के आनंद के लिए, केवल भगवान के प्रेम के वश, केवल भगवान के मायावश मोहवश ये कार्य करते हैं। जैसे देवकी ने भी भगवान को 4 भुजा वाले रूप से छोटे रूप में आने के लिए विनती की थी। हाँ अभी भगवान के लिए छोटा रूप और 4 भुजा वाला रूप क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर? भगवान के लिए क्या भय है? और माता देख रही है कि भगवान है मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन माता को फिर भी क्या भाव है कि ये मेरे बालक है और इसके ऊपर कंस आक्रमण करेगा और उसको मारने का प्रयास करेगा। इसलिए नहीं 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 आप 4 भुजा वाले में नहीं, आप छोटे रूप में आना। तो अपने माता के प्रेम वश वो भी छोटे रूप में तुरंत आ जाते, अपने 4 भुजा वाला रूप जो है तुरंत वहां पर अंतर्धान कर देते। इस तरह से अपने भक्तों का प्रेम का अनुभव करने के लिए उनके द्वारा प्रेम के द्वारा जो कार्य है, हाँ उसको पैम्परिंग का पता नहीं हिंदी में क्या शब्द है, हाँ क्योंकि पैम्पर्ड कृष्ण भगवान ये कार्य करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि वो जो ब्रज का आनंद है जो ब्रजवासियों के द्वारा उनको प्राप्त होता है, वो प्राप्त करने के लिए वो वैकुंठ छोड़कर वहाँ का ऐश्वर्य छोड़कर ब्रज में आते हैं। ऐसे कहते हैं कि ब्रज के ब्रजवासियों का छाछ और मक्खन खाने के लिए रुक्मिणी के द्वारा दिए गए 56 भोग छोड़कर वो ब्रज में आते। तो इसलिए ऐसे कहा गया, इसलिए ब्राह्मणों को के लिए बहुत अच्छा समय था। हर दिन उत्सव, हर दिन पूजा, हर दिन दक्षिणा, हर दिन गाय, हर दिन भोजन, हर दिन वस्त्र मिल रहे हैं उनको। तो इस तरह से शक्टासुर का ये जो लीला है ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भगवान का ब्रह्मांड पुराण में जो अनेक नाम बताए गए उसके अंदर एक नाम है शकट भंजन, यानी जो शकट यानी कि उत्कच राक्षस को मारने के लिए उन्होंने ये कार्य किया, इसलिए उनको शकट भंजन नाम किया गया। और अर्जुन हमारे पांडव जो हैं अर्जुन, वो एक धर्म एक शास्त्र है उसका नाम है विष्णु धर्म, उसलिए भगवान का गौरव करते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि ऐसा दिव्य कार्य, इतने से शरीर में इतने से पैर लेकर इतने बड़े राक्षस को मारने का कार्य आपके बिना कौन कर सकता है, इट्स ओनली यू कैन डू इट। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत इस ग्रंथ में इन राक्षसों के द्वारा जो अनर्थ अनर्थ है जिसको वो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो शक्टासुर के बारे में बताते हैं कि हमारी नई और पुरानी जो खराब आदतें हैं, हमारा जो आलस्य है, इसका ये शक्टासुर प्रतिनिधि है। नई और पुरानी आदत मतलब क्या है, जब से हमने जन्म लिया है तो हमने बचपन से ये खाया वो खाया ये कार्य किया है, इसको बुरा बोलने का हमने आदत बना के रखी है, बड़े गर्व के साथ में पैम्पर्ड चाइल्ड और कुछ खाने पीने का बुरी आदत हमको है, देर से उठने की आदत है, ये सारी जो तमोगुणी आदतें हैं ये हमारे भक्ति में बाधा रहती है। और कुछ अच्छी आदतें भी होती है जिसको हमें जिस पर हम गर्व करते हैं, वो जो अच्छी आदतों का गर्व भी है वो भी हमारे भक्ति के लिए बाधा है। इसलिए जिस अच्छी आदतों का आपको गर्व है वो आदतें, और जो बुरी आदतें हमारे आत्मकल्याण के लिए नाशक हैं वो भी आदतें, ये दोनों इस प्रकार की आदतें, और वो जो आलस्य है इसका प्रतिनिधि शक्टासुर है। और भगवान अपने पैरों का स्पर्श करके इन आदतों को नष्ट कर सकता है, इसलिए भगवान के दिव्य चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल श्री कृष्ण भगवान ऐसे आदतों से हमको मुक्त करा सकते हैं। तो इसके आगे भगवान के पृथ्वी पर कीते करते हुए लीला के पहले साल के अंदर और एक घटना होती है। उस घटना में यशोदा माता भगवान को दूध पिलाती है, अपने हाथ में लेती है और अपने महल में घूम रही है। जैसे ही वो महल में घूम रही है तो अचानक जो फूल के समान रुई के समान हल्का बालक है, सब गोपियां कहते हैं कि तुम्हारे बालक का जो अंग है वो रुई के समान मक्खन के समान मुलायम है, वो कितना हल्का है, ऐसा कि हवा लगता है उठा दे वो। ऐसा छोटा सा नन्ना सा प्रिय सा बालक, सुंदर सा बालक को लेकर यशोदा मैया आंगन में डोल रही है, घर के बरामदे में डोल रही है, अचानक वो बालक जो है सुमेरी पर्वत के समान भारी हो जाता है अचानक। और जैसे कोई पेड़ बहुत सारे आपने देखा होगा, वो जो बड़े बड़े होते ना, वो मैश मेलन वाटर मेलन, वो जब आते हैं तो उसके वजह से वो पेड़ जो है पूरा झुक जाता है, तो वैसे यशोदा माई उस बालक के वजन से पूरी झुक गई, शी गेट कम्प्लीटली बेंट, और वो थक गई, उसको सांस फूलने लगी और समझ में नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उसको कुछ समझ में आने के पहले उसने बालक को जमीन पर रख दिया, वजन सहन न करते हुए, सहन न होते हुए। और कवि कर्णापुर वहां पर बताते हैं कि उसके बाद में एक अद्भुत घटना हुई जो माता के तरफ से अपेक्षित नहीं है कि माता ऐसे करेगी। कोई साथ में नहीं है, कोई सखी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सखा नहीं है, भगवान के कोई बाल सखा नहीं, कोई है ही नहीं वहां पर। ऐसी अवस्था में घर के आंगन में अकेले में यशोदा माई उसको वजन के बहाने नीचे रखती है, लेकिन तुरंत उसको छोड़कर अंदर काम करने को चली जाती है। तो कवि कर्णापुर समझाते हैं कि ये भगवान की दिव्य योजना है योग माया के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि माता इतना भगवान का ख्याल करती है, वो ऐसे अचानक बच्चे को अकेले को छोड़कर घर में कैसे जा सकती है, भगवान को बालक को आंगन में छोड़कर, शी इज गॉन इनसाइड, इट्स इम्पॉसिबल। तो एक ही समझ सकते हैं कि भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव से अपने आप को माता से अलग करने के लिए कुछ समय के लिए और लीला करने के लिए ये कार्य किया। और ऐसे कहा कि एक ही क्षण के लिए वो अंदर गई और एक ही क्षण में वो बाहर आ गई, तुरंत को याद है अरे मैंने ऐसे कैसे किया, बालक को छोड़कर कैसे अंदर चली गई मैं, लेकिन उस छोटे से कालावधि में क्या क्या हुआ। अचानक तृणावर्त नाम का राक्षस कंस के द्वारा भेजकर वहां पर उपस्थित हुआ, और तृणावर्त ने आते ही एक झंझावात यानी तूफान का रूप धारण कर लिया, और उसके प्रभाव से सारे मनुष्य जीव सारे प्राणी भयभीत हो गए। जैसे कोई सांप जो होता है ना, अना हजारों सांप जो अगर क्रोध में आकर या विरह में आकर अगर वो गरम गरम हवा फेंकते हैं तो उसकी गर्मी के द्वारा, उसके विष के द्वारा ऐसा कष्ट होता है लोगों को, वो कष्ट लोगों को महसूस होने लगा। और तुणावर्त ने बहुत तेजी से बहने वाले वायु हवा भेजी और साथ में बहुत भयंकर जो डस्ट यानी कि धूल की वर्षा की उनके ऊपर, गति के साथ में हवा और धूल, इसके द्वारा जब रण में हाथी और घोड़ों के पैर के द्वारा उठे हुए धूल से जब अंधेरा पैदा होता है, दिन के समय युद्ध होने होता है तो रणभूमि में अंधेरा पैदा होता है क्योंकि केवल धूल धूल के उड़ने से, उस प्रकार से ब्रज में पूरा अंधेरा छा गया, सबकी आंखों में धूल जाने लगी। हाँ, और ऐसे कहा गया है कि तुणावर्त ने अपने इस भयंकर झंझावात से ब्रज के नैसर्गिक संतुलन को बिगाड़ दिया, क्योंकि हर एक वातावरण में पांच महाभूतों द्वारा संतुलन होता है, पृथ्वी वायु तेज आकाश जल, इन तत्वों से एक संतुलन होता है, उससे हम जीते हैं आराम से, तो वो संतुलन ने पूरी तरह बिगाड़ दिया और केवल वायु के माध्यम से पूरे वातावरण को प्रभावित कर दिया। ही कंट्रोल्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ द ब्रजभूमि सिंपली बाय द एलिमेंट ऑफ वायु। फिर ब्रजवासी लोग बहुत कष्ट प्राप्त किए और ये जो तूफान का प्रभाव था, ये धूल का जो तूफान था, ये स्वर्गलोक तो पहुंच गया और स्वर्गलोक के लोग भी त्रस्त होने लगे, इतना प्रभाव था इसका। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कोई 500 किलोमीटर तक, यहां से लेकर स्वर्गलोक तक इसका आंच पर पहुंच गया, धूल का और तूफान का, इतना प्रभावशाली वो राक्षस था तुणावर्त। तो इस तुणावर्त ने वो सबको पैदा करने के बाद में तुरंत भगवान को उठा लिया अपने हवा के झोंके में। और तृणावर्त का और एक मतलब यह है कि तृण का पत्ते जो गोल 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 घूमते हैं उसके प्रभाव से, तृण आवर्त, आवर्त यानी कि भवरा, उस प्रकार के भयंकर भवरे के रूप में प्रकट हो गए और उस भवरे के प्रभाव में उन्होंने भगवान को उठा लिया और भवरे के शिखर में पहुंच गए वो। और भगवान को लेकर जब हवा में पहुंच गए, उसका उद्देश्य यह था कि मैं ऊंचे 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 ऊंचाई पर जाऊंगा और वहां से भगवान को नीचे पटक दूंगा, फिर वो मर जाएंगे। लेकिन भगवान के शरीर से जो खुशबू आ रही थी, वो जब उस भंवरे के शिखर पर पहुंच गए जो स्वर्ग लोक के पास चिपका हुआ था, वो भगवान के शरीर के सुगंध से स्वर्ग लोक में महक पहुंच गई भगवान की। और ऐसे भी कहा गया कि स्वर्ग लोक में देवताओं को भगवान के दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, तो सब स्वर्गवासी देवताओं को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान दिख रहे से रहते, जैसे कोई बड़े पहाड़ पे, काले रंग के पहाड़ पे कोई नीलमणि चढ़ रहा हो, ऐसे भगवान जो है इतने बड़े विशाल शरीर के ऊपर तुणावर्त के चढ़ रहे थे, ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे, हाथ में थे, हाथ से चढ़कर गर्दन पे, गर्दन पे सर पे बैठ गया उसके, और सर पे बैठकर अपने दोनों कमल जैसे मुलायम हाथों से उस तुणावर्त का गला दबाया उन्होंने। तुणावर्त छोड़ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, लीव मी चिल्लाने लगा, और भगवान ने उसके गले को दबोच लिया और वहीं पर तुणावर्त का देहांत हो गया आकाश के अंदर। सब देवता लोग भगवान के शरीर की खुशबू का आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नीलमणि पहाड़ पर चढ़ रहा है, और उस समय भगवान को ऊपर से फेंकने के पहले उसने गला दबोच कर वहीं पर उसका देहांत हो गया। और उस समय भगवान सुमेरु पर्वत के समान दोबारा एक बार यशोदा के हाथ में भारी हो गए, फिर वापस हल्के हो गए, हल्के होकर हवा के झोंके से उसने उड़ा लिया उसको, भ्रम से इतना हल्का बालक है, फेंक दूंगा उसको, मार दूंगा, फिर वो एक बार दोबारा सुमेरु पर्वत के समान भारी हो गए। और भगवान के वजन से मृत्यु प्राप्त होने के बाद वृंदावन के शहर के बाहर के सीमा के अंदर, बाहर के सीमा में पत्थर भारी बड़ी चट्टान पर गिर गया, धड़ाड़ करके आवाज से गिर गया और उसका शरीर चूर चूर हो गया। भगवान जो है आनंद से उसके ऊपर, जैसे कि वाहन पर कोई हवाई जहाज पर बैठकर सैर कर रहे, ऐसा आनंद ले रहे, इतना बड़ा आवाज जब हो गया तो सब ब्रजवासी भागे क्या हुआ देखने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि एक क्षण में यशोदामाई भाग भाग के आई, उसके पहले थोड़ा वर्णन बताना भूल गया कि वो सब करते समय आकाश से उसने ईंट के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े, धूल हवा सब ब्रजवासियों को फेंका, किसी को वो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। यशोदा माई भाग पे आई, देखा ना इतना अंधेरा छा गया है, सब आंखों में धूल जा रही है, हवा जा रही है, बहुत भयंकर आवाज आ रही है, आकाश से ईंटें गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, बर्तन के टुकड़े गिर रहे हैं, लेकिन बालक कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में भी आचार्य बताते हैं कि तृणावर्त जैसे राक्षस के माया के प्रभाव से हमारे जीवन में कभी बार भ्रम होता है, क्या हो रहा है समझ में नहीं होता है। ऐसे प्रकार के संकट आते हैं कि जीवन में क्या हो रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये तृणावर्त का अंधेरा है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन भगवान पर श्रद्धा रखेंगे तो ये नष्ट हो जाता है। जैसे ही भगवान के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई और जमीन पर पत्थर पर पटक कर चूर चूर हो गया, उस समय ये तृणावर्त का जो तूफान था वो तुरंत शांत हो गया। तो यशोदा माता जब देखी कि दूर जहां पर एक्चुअली पुतना गिरी थी, जहां पर रोती रोते हुए पुतना जो भगवान स्तन पे लगे हुए थे और वो चूस रहे थे और छोड़ 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 करके वो चिल्ला रही थी, और उसने बड़ा शरीर धारण कर लिया, नया शरीर धारण किया था सुंदर स्त्री का, वो छूट गया उसका और वो भाग गई घर के बाहर और वृंदावन की सीमा के वहां पर जाके गिर गई, उसी जगह पर तृणावर्त गिर गया। और धड़ाड़ से आवाज जब हुई तो ब्रजवासी सब वहां पर भागे, यशोदा माई भी भागी और देखा तो क्या कि इतने बड़े राक्षस के शरीर के ऊपर एक महान पर्वत की तरह शरीर है उसका, उसके ऊपर छोटा सा नीलमणि की तरह से आराम से शांत चुपचाप बैठे हुए, मानो जैसे कि डर के मारे बैठे। वो देखकर यशोदा वही बेहोश हो गई, शी इमीडिएटली बिकेम अनकॉन्शियस। तो उसको दोबारा फिर सभी स्त्रियों ने जल बल छिड़क कर होश में लाया। तो यशोदा रोने लगी जोर जोर से कि मैं कितनी पापी हूं, मैं कितनी दुष्ट हूं, कैसे मुझे मेरे बालक के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे कैसे मैं कर सकती हूं कि बालक को सुरक्षा के बिना आंगन में अकेले छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूं, मैं इतनी मैं केयरलेस कैसे हो सकती हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं वादा करती हूं कि मैं इसके आगे कभी भी भगवान को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ये कहते कहते दोबारा वो बेहोश हो गए, फिर दोबारा सभी, क्योंकि विलाप कर रही हो, अपने आप को कोस रही है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरे हाथ से ये गलती हो गई, लेकिन उसकी गलती जो है पूर्णता से योग माया के शक्ति के प्रभाव में थी, उसकी इच्छा से नहीं थी, नहीं तो उसकी जैसी प्रिय माता जो जगन माता तो सर्वश्रेष्ठ माता है वात्सल्य रस की, उसके हाथ से भगवान को एक क्षण के लिए भी अकेले में रस्ते पर छोड़ के जाना नामुमकिन है। दोबारा वो बेहोश हो गई तो फिर उसको जगाया गया जल छिड़क के गोपियों द्वारा, तो फिर अपने दुर्भाग्य को कोसती रही, मेरे दुर्भाग्य की वजह से बार बार इस कृष्ण पर आक्रमण हो गए। फिर गोपियों ने शांत किया उसको, फिर वो उसको होश मिलाया। तभी मैं यशोदा के जो वचन है उसको पढ़ूंगा ताकि यशोदा की भावना को हम समझ सकते हैं कि यशोदा कितनी भावना से बात कर रही थी। वो द्रोहिणी से कह रही है, अभी भी यहाँ पर उसके पहले जब भी बालक उनको दिखाई पड़ा, फिर होश में आई, फिर बालक को गोद में लिया, फिर बेहोश हो गई, फिर होश में आई, तो पहले उसने बालक को स्तनपान कराया और फिर रोहिणी को कहने लगी कि मुझे मेरे दैव ने एक ही पुत्र दिया है, बहुत से पुत्र नहीं दिए हैं, और क्षण पर भी मैं ऐसा अरिष्ट नहीं कर सकती हूँ, ये मौत से मुँह से बच के आया है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ इसको, बार बार राक्षसों का आक्रमण हुआ जा रहा है इसके ऊपर, कैसे रक्षा करूंगी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि धन से, शरीर से, मकान से, अटारे से, ऐश्वर्य से, रत्नों से कैसे मैं इस बालक को बचाऊं कि ताकि ये कुशल में कुशल रहे, ये अरिष्टों पर विजय प्राप्त करे, उसके लिए मैं भगवान हरि को पूजा करूंगी, दान करूंगी, यज्ञ करूंगी, भवनों का निर्माण करूंगी, सैकड़ों मंदिर बनाऊंगी, हे रोहिणी मुझे आप बताओ क्या करूं मैं, अभी एक अंधे को जैसे लाठी का सहारा होता है वैसे मेरे पूरे जीवन का सहारा ये बालक है, इस प्रकार मेरा सारा सुख जो है इस बालक से है, मैं उस स्थान पर उसको लेके जाना चाहती हूं जिस स्थान पर उसके लिए कोई भय ना हो। फिर वो कह रही है, कभी कर्णापुर वर्णन कर रहे हैं कि एक क्षण के पहले उसको मैं उठा नहीं सकी और उसको नीचे रख दिया, तुरंत राक्षस ने उसको उठा लिया, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूं, मैं उसकी माता हूं, मेरे हाथ से ऐसा घटना और ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है ये मेरा मक्खन जैसा मुलायम शरीर वाला बालक जो मेरे गोद का भी कभी कभी दर्द सहन नहीं कर सकता है, उसको मेरी गलती की वजह से इतने भयंकर राक्षस के गोद में इतने आकाश तक उठाया गया, मैं कैसे अपने आप को माफ कर सकती हूँ, पहले तो उतना के विष भरे स्तन स्तनों से भगवान ने मेरे बालक की रक्षा की, उसके बाद में गिरते हुए शकट से मेरे बालक ने उस बालक को भगवान ने बचाया, अब मैं उसी भगवान को दोबारा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बालक की हमेशा रक्षा करते रहें, भगवान की कृपा से मुझे ये बालक दोबारा प्राप्त हो गया है,
मैं कभी भी उसको अपनी गोद से अलग नहीं करूंगी, कभी भी उसको अपने गोद से नीचे रखूंगी नहीं। आइए, आप सब लोग ने मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मदद की है, कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो, इस तरह से बोलकर उन्होंने फिर अपने बालक को अपने गोद में लिया। फिर यशोदा मई दोबारा कही, उन्होंने कहा कि जब बालक का ये जन्म हुआ है तब से उसके ये बार बार कष्ट हो रहे हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, मुझे ही उसमें मेरा ही दोष है, मेरे ही ग्रह जो है वो गलत है, मैं ही बहुत दुर्भाग्य हूँ। फिर बालक का गौरव करती है कि तुम बड़े दिव्य हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान बार बार तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम जो है वो अहेतुकी है और तुम मुझ पर जितना प्रेम करते हो वो भी अहेतुकी है, इसलिए मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें मुझे दो दंड देना है मेरे गलती के लिए, वो तुम दे सकते हो। ऐसे यशोदा अपने बालक से बात कर रही है। तो इस तनाव्रत का जो दोष है यानी कि अनर्थ है वो ठाकुर भक्ति विनोद जी बताते हैं कि जो शास्त्र पढ़ के विद्वान होने का गर्व है और जो बेकार के तर्क करता है शास्त्र के आधार पर और ऐसे तार्किक लोगों के साथ में संग करता है, ये जो दोष है ये तनाव्रत के रूप में हमारे लिए प्रकट होता है। हम अपने भक्ति जीवन में शास्त्र पढ़ते हैं, फिर शास्त्र पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, फिर भागवत पढ़ते हैं, फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, फिर उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और हमारे ज्ञान पर हमें बड़ा गर्व होता है। अभी आपको समझना चाहिए कि सारा ज्ञान जो भगवान के द्वारा दिया गया है, सारे ज्ञान का जो स्रोत है उसमें भगवान है और उन्हीं के द्वारा ये श्रवण के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसको, इसमें गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा गर्व करने पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ज्ञान जो है ये डूबते हुए नदी में जो डूब रहा है, सागर में डूब रहा है, उसके सर पे रखे हुए मुकुट की तरह होता है। ये ज्ञान भारी मुकुट जब होता है, आप जब डूब रहे हो आपके सर पे भारी मुकुट है तो क्या होता है, आप अधिक तेजी से डूबने लगते हो पानी में। तो भव सागर में रहते हुए जब हम पहले से ही डूब रहे हैं और हमारा ज्ञान का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं हो रहा है और हमारे ज्ञान का उपयोग केवल अपने अहम को बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो वो ज्ञान उस मुकुट की तरह होता है जो भव सागर में हमें अधिक डुबाने के लिए सहायता करता है। इट हेल्प्स यू टू ड्राउन फास्टर। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा ज्ञान जो है जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हर ज्ञान का एक एक कर्ण जो है वो केवल लोगों को वितरित करने के लिए, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए और लोगों को भगवान की तरफ भक्ति उत्पन्न करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। और केवल किसी और ने व्यक्ति के साथ में तर्क करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, वाद विवाद में जीतने के लिए इस ज्ञान का उपयोग नहीं होना चाहिए। और जब ये ज्ञान का उपयोग केवल भगवान की भक्ति के लिए और दूसरों को देने के लिए ताकि उनकी भक्ति बढ़े, तब इस अनर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस तनाव्रत का थोड़ा इतिहास भी है। वो इतिहास यह है कि कंस जो था भगवान का मामा, देवकी का भाई, बड़ा दिग्विजय पराक्रमी वीर था, चक्रवर्ती सम्राट था वो। उसका गर्ग संहिता के कुछ पहले अध्याय में वर्णन किया गया है पूरा कि विश्व के सारे जितने असुर थे सब असुरों को उसने वध कर दिया था, वध नहीं वश में कर लिया था, जा जाकर उनके सामने जाकर चैलेंज करते हुए, उनको आह्वान देते हुए उन्होंने हर एक राक्षस को अपने वश में कर दिया था। एक ही राक्षस ऐसा था जरासंध, जिसने उसके सामने अन्य राक्षसों को कंस को वश में करते हुए देखा, कंस ने उनको वश में किया उनके आंखों के सामने, तुरंत अपनी अस्थि और प्राप्त दो कन्याओं को लेकर भाग भाग के आया, बोला कंस महाराज इनसे विवाह करो और हमारे दामाद बन जाओ। उसने अपने सामने कंस के आह्वान को स्वीकार करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि शायद मैं परास्त हो जाऊं, इसलिए तुरंत अपनी दो कन्याओं को लेकर कंस के साथ विवाह कर दिया और उसका ससुर बन गया और उसका मित्र बन गया। बाकी सारे राक्षसों को उसने जा जाकर हमला किया, तो वह नरकासुर के झुंड में गया। एक बार नरकासुर का एक बड़ा ग्रुप था राक्षसों का, उस ग्रुप के अंदर प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पुतना, तृणावर्त, ये सब बड़े बड़े राक्षस थे। तो एक एक कर उसने प्रलंबासुर, धेनुकासुर सबको मुक्का प्रहार करके और मुष्टि युद्ध में परास्त कर दिया। तब तृणावर्त के ऊपर उसने आक्रमण किया, तो तृणावर्त ने क्या किया, कंस को पकड़ा और उसको
100,000 योजन आकाश में लेके गया वो, मतलब कितने 800,000 मील आकाश में लेके गया वो, 800,000 मील। अपना जो पर्यावरण है वो केवल 1,000 किलोमीटर तक है, और एक 2.5 किलोमीटर का एक मील होता है, 2 मील का एक कोस होता है, और 2 कोस का एक योजन होता है। तो कितने योजन हो गए वो, कुछ भी नहीं, ये 20 योजन हो सकता है। 100,000 योजन तक कंस जैसे महापराक्रमी सम्राट को लेकर रणावर्त जो है आकाश में चला गया, और आकाश में युद्ध किया उसके साथ में। लेकिन ये कंस जो था इतना बलशाली था, उसने अपने बल से 100,000 योजन आकाश की ऊंचाई से रणावर्त को जमीन पर खींचा और जमीन पर पटक दिया उसको, तो रणावर्त के मुंह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया होगा, और फिर उसके बाद में कंस के वश में हो गया वो। तो वही रणावर्त है ये, जिसने भगवान को केवल 2 योजन आकाश में लेके गया, 8 मील तक। और ये कौन था, इसके पूर्व इतिहास क्या है? इसका पूर्व इतिहास यह है कि ये राजा सहस्राक्ष था, जो भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ा वेदों में विष्णु में विश्वास करने वाला था। और एक दिन वो अपने सहस्त्र पत्नियों को लेकर नर्मदा के दिव्य तट पर विहार करने गया, आनंद लेने के लिए गया। जब वो आनंद ले रहा था तो वहाँ से दुर्वासा मुनि आए, और जब आनंद में मशगूल था तो दुर्वासा मुनि को उसने वंदन नहीं किया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, शाप दिया उसको, राक्षस बन जा। जब शाप प्राप्त हुआ तो ये होश में आए, अपने आनंद में से जग गए और दुर्वासा के चरण में गिर गए और उस शाप की मांग करने लगे। तब दुर्वासा मुनि ने शाप दिया, उनको शाप दिया कि जब श्री कृष्ण के द्वारा उनके शरीर के दिव्य अंगों का तुम्हें स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। खाली शकटासुर और तृणावर्त में इतना ही अंतर है कि शकटासुर को भी भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, तृणावर्त को भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं हुआ, ये एक अंतर है। तृणावर्त को भगवान के दिव्य अंग का स्पर्श हुआ अपने शरीर के उत्तरांग में, ऊपर के हिस्से में, और भगवान के दिव्य करकमलों द्वारा उसका गला घोटा गया, जिसके वजह से तृणावर्त के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो गई। ऐसा वर्णन हम भागवत में और गोपाल चंपू में पढ़ते हैं, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा गया है कि वो भी गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, एक में ऐसा लिखा है एक में ऐसा लिखा है, उसको कल्प भेद कहते हैं। एक बार जब भगवान आए होंगे तो इन्होंने ये लीला किया होगा, अगली बार जब लीला किया होगा तो तृणावर्त को गोलोक धाम ले गए होंगे। एनीवे हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी है कि जैसे भी और जिस ये न के न प्रकार है, किसी प्रकार से भी जब भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का हमें स्पर्श होता है, जब भगवान के दिव्य वपु का हमें स्पर्श होता है, जब भगवान का दिव्य चरण कमलों का हमको स्पर्श होता है, तो हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रेम जागृत होता है और हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और अगर भगवत धाम को प्राप्त नहीं भी किए, जैसे कि नल कुबेर मणिग्रीव जो है वो भगवान के द्वारा गिर गए, उनका वृक्षों को गिराया गया, लेकिन ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि जहाँ पर भी रहेंगे भगवान की भक्ति में रहेंगे। वैसे भगवान के भक्त क्या वर्ण क्या इच्छा करते हैं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवतात भक्तिर अहित की त्वयि, उनकी इच्छा क्या होती है, ये नहीं कि मुझे इसी जन्म के अंत में आपका धाम प्राप्त हो, आपके धाम में दिव्य शरीर के रूप में आपका संग हम प्राप्त करें, ऐसी इच्छा नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आपको इस जन्म के अंत में हमको मुख से देना भी नहीं है तो भी चलेगा, हम जहाँ पर भी रहेंगे आपको नरक में भेजना है, आपको स्वर्ग में भेजना है, भोग शरीर में नरक में भेजना है, यातना शरीर में, पृथ्वी पर जानवर के शरीर में भेजना है, या मनुष्य शरीर में निचले योनि में भेजना है, कहीं भी आप भेजो, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे जन्म जन्मांतर तक आपकी अहैतुकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो हमें देखना यह है कि भगवान के साथ में किसी न किसी प्रकार से संपर्क में हमको रहना है। दिस लाइफ इज मेंट फॉर रिमेनिंग इन कनेक्शन विद द लॉर्ड ऑलवेज, हर समय के लिए भगवान की स्मृति में, भगवान के विचार में और भगवान की सेवा में अपने तन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को लगाए रखते हुए, अपनी आत्मा को भगवान के विचार में और स्मृति में एक साथ जोड़कर रखने के लिए इस जीवन को दिया गया है। क्योंकि जानवर के शरीर में और निचले योनि के शरीर में ऐसी प्राप्ति नहीं हो सकती, मनुष्य शरीर में भगवान का नाम लेकर, भगवान के भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, भगवान के भक्तों का संग करते हुए, भगवान को अर्पण किए हुए दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते हुए, भगवान को अर्पण किए हुए जल को अपने सर पर स्वीकार करते हुए भगवान को दिए हुए दिए को यानी कि अग्नि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मैं विषयों पर विजय प्राप्त करता हूँ। सकल प्रपंच जाए, वो कहते हैं भगवान को अर्पण की गई वस्तु को स्वीकार करना, चाहे वो भोजन के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, पितृ के रूप में हो, जल के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, महाप्रसाद और कोई अंगूठी है, कोई चरणों का नूपुर है, कभी प्राप्त होता है हमको वृंदावन जाने के बाद में राधा रानी के चरणों का नूपुर प्राप्त होता है महाप्रसाद के रूप में, अंगूठी प्राप्त होती है भगवान के हाथ की, पुजारी लोग देखते हैं प्रसाद के रूप में। वो सारे वस्तुओं के संपर्क में आने से हमारे इंद्रियों के विषय भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और हम भगवान की भक्ति और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी भक्ति का प्रभुपाद ने दिया हुआ जीवन इतना श्रेष्ठ है, एक मॉर्निंग मंगल आरती से लेकर प्रसाद ग्रहण करने के समय तक जितनी विधि है उसमें हमको भगवान को अर्पण किए हुए अनेक वस्तुएं एक ही सेशन में प्राप्त हो जाए। इज दैट ट्रू? अगरबत्ती का स्मेल प्राप्त होता है, अग्नि का आँच प्राप्त होती है, फिर उसके बाद में वो शावर करते हैं, वो कैसे भगवान को अर्पण किया हुआ जल जो है, जो भगवान के सर से अर्पण करते हैं, ऐसे कहा गया है कि उसके जल के हमारे सर के ऊपर धारण करने से जो सर के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाता है। ऑल द इफेक्ट ऑफ बैड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द बैड स्टार्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन यू गेट द वाटर ऑफ दिस ऑफर टू द लॉर्ड। फिर दर्शन है, नेत्रों से दर्शन प्राप्त होता है, फिर कानों से भगवान के बारे में कथा सुनने को मिलती है, संपर्क हो रहा है, हर इंद्रियों के द्वारा संपर्क होते जा रहा है, फिर शरीर के द्वारा नृत्य किया जा रहा है, कीर्तन में हम लोग नाच रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं, आँखों से कान से सुन रहे हैं, बाकों से देख रहे हैं और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद में फिर उसके बाद में भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर रहे हैं। अनंत माध्यम से प्रभुपाद जी ने एक ही सेशन के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर अनंत प्रकार से भगवान के साथ में तीव्रता से संपर्क करने का मौका हमको दिया है। फिर उसके बाद में उत्सव दिए हैं, जन्माष्टमी आएगी, बलराम जयंती हो गई, उसके बाद में गोवर्धन पूजा आएगी, उसके बाद कार्तिक महीना आएगा, दीपदान होगा, अनंत अनंत माध्यम से ये न केंद्र प्रकार भक्तों के लिए विविध प्रकार के विविधता के साथ में भगवान के साथ हमेशा संपर्क में कैसे रहे, ऐसी सुंदर सुविधा भगवान प्रभुपाद जी ने हमारे लिए प्रस्तुत की है। इसलिए हम प्रभुपाद जी के अनंत ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कुशलता के साथ में ऐसा प्रोग्राम किस संप्रदाय में बना नहीं है, इतना सुंदरता से इतने घंटों तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए तो योजना बनाई है। ये केवल इस्कॉन में है, आपको पता होना चाहिए, हम कई प्रकार के मंदिरों में गए हैं, कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता है, बड़े बड़े मशहूर मंदिरों में 3 मिनट की मंगला आती होती है, उसमें केवल क्या होता है, एक लैंप दिखाते हैं और जल दिखाते हैं, बाकी सारे व्यंजन उसको इस्तेमाल नहीं करते और 3 मिनट के अंदर सब लोग चले जाते हैं। इस्कॉन के मंदिर के अंदर सुबह 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। सो मेनी आवर्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें आत्मा भगवान के भक्ति भावना से प्रभावित होनी ही होनी है और प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर 10 साल तक लगातार कोई हर रोज मंगल आरती अटेंड करेगा तो वो जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। अरे वो मैं तो नहीं कर पाया अभी तक। कई साल मंदिर में रहा तो 2 साल हुआ उधर, 1 साल वहाँ पर हुआ, ऐसे बीच बीच में, लेकिन लगातार 10 साल मंगल आरती का अटेंड नहीं हुआ है अब तक। और मैं देखता हूँ कि हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जो हैं वो दुनिया में कहीं भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, और 3 बजे भी उनकी फ्लाइट अगर पहुंचती है तो उसके बाद तुरंत वहाँ से वहाँ के पास के मंदिर में जाएंगे और आपको ऑल्टर में दिखाई देंगे मंगल आरती करते हुए। सो नाइस, दिस वृंदावन में जाओ, मायापुर में जाओ, जहाँ पर भी महाराज रहेंगे वो आपको मंगल आरती के समय ऑल्टर में दिखाई पड़ेंगे, इज डूइंग आरती ऑफ द लॉर्डशिप। इसलिए मैं देखता हूँ कि गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य वृंद में ये बहुत उत्साह है, प्रेरणा है कि सब लोग मंगल आरती में अधिक संख्या में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे श्रेष्ठ आदर्श स्वयं प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है उदाहरण के रूप में, कि हमारा ये परम भाग्य है, बार बार इस भाग्य को याद करना, दोहराना, उसकी स्मृति को दोहराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे हाथ से एक कीमती हीरा जो है भक्ति का, जो इस्कॉन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, निकल जाएगा वो। इसलिए जितना हो सके उतना हमको इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए, हमारे इंद्रियों द्वारा जितना हो सके हमारे मन द्वारा, जितना हो सके हमारी बुद्धि के द्वारा, जितना हो सके हमें हमेशा भगवान के साथ में जुड़े रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। वेर एवर वी आर, वॉट एवर वी आर डूइंग, ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विद द लॉर्ड, क्योंकि भगवान के साथ संपर्क होने से माया आपको नहीं छुएगी, हाँ आप पद भ्रष्ट नहीं होंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे, त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, त्रिविध ताप से मुक्त रहेंगे और भगवान की स्मृति से हमेशा आनंद का स्रोत आत्मा पर बरसता रहेगा। तो इस तरह से ये शक्टासुर और तृणाव्रत की कथा समाप्त होती है। तृणाव्रत को वध करने के पश्चात यशोदा माता जी ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया और परम भगवान को पूजा अर्पण की। फिर नंद महाराज ने 100,000 गौ, 10,00,000 स्वर्ण मोहरे, 100,000 बहुत ही कीमती रत्न और 100,000 सुंदर प्रकार के वस्त्र जो है ब्राह्मणों को दान दे दिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण जाने के पश्चात सारे ग्वाल बालों को बुला बुला कर उन्होंने भोजन कराया और उनको वस्त्र दान कराया। ब्राह्मणों ने कुशाग्र, फ्रेश लीव्स यानी कि ताज़े पेड़ के पत्ते, शुद्ध जल, स्वस्ति वचन, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद के श्लोक और दिव्य सुरक्षा कवच मंत्र उच्चारण करके भगवान को सुरक्षित किया। यानी कि परम विष्णु भगवान को, जो वो समझते थे कि ये तो बालक है इसके लिए विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, तो विष्णु के लिए सारे वेदों का स्वस्ति वचन और श्लोक कहकर यज्ञ करवाया और भगवान के शरीर पर सुरक्षा कवच मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने। इस तरह से भगवान के प्रणाम्रत के वध करने के बाद में फिर दिव्य विधियों का घर में पालन हुआ और फिर ब्रज में आनंद छा गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा गिरिधारी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।